ओम शांति। एक हंस और एक हंसिनी हिमालय से निकल पड़े और उड़ते 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 बहुत दूर निकल आए और शाम हो गई थी। एक वीरान सा इलाका था और वहां पर वो आ गए और एक पेड़ पर बैठ गए और वहां बैठकर दोनों बातें करने लगे। हंस ने कहा कि रात होने को है, इसलिए हम आज यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह उड़कर चले जाएंगे कहीं और। वो हंसिनी कहती है, पर ये क्षेत्र देखो कैसा है, वीरान सा बिहड़ जंगल सा, यहां पर तो कोई भी दिखाई नहीं देता। और उतने में उसी झाड़ पर एक उल्लू होता है जो कुछ गा रहा होता है बड़ी कर्कश आवाज से। तो वह हंसिनी कहती है, अब समझ में आया कि ये इलाका ये क्षेत्र इतना निर्जन सा क्यों है, इस उल्लू की वजह से कैसे चिल्ला रहा है। सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है तो उल्लू उन जोड़े के पास आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद आपको रात को मेरी वजह से तकलीफ हुई, इसके लिए मैं माफी मांगने आया हूं। तो हंस कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वो दोनों जाने लगते हैं, हंस और हंसिनी। उल्लू पीछे से आवाज देता है, अरे हंस, पर तुम ये मेरी पत्नी को कहां ले जा रहे हो। हंस को आश्चर्य होता है, पत्नी किसकी और तुम्हारी। वो कहता है, कौन सी पत्नी। वो कहता है, ये हंसिनी, ये मेरी पत्नी है, इसको तुम कहां लेके जा रहे हो। वो कहते हैं, अरे वाह, ऐसे कैसे तुम्हारी पत्नी है, हम दोनों साथ आए थे, ये तो मेरी पत्नी है। वो कहता है, ऐसे कैसे, ये मेरी पत्नी है, तुम बिल्कुल इसको लेके नहीं जा सकते। तो झगड़ा हो जाता है, फिर बात बढ़ जाती है, आसपास के लोग वहां आ जाते हैं, पंचायत बैठती है, सरपंच आते हैं, आ गए सुबह सुबह, शाम के समय कोई नहीं था, सुबह सुबह सब आ गए। तो वाद विवाद बढ़ते जाता है और अंततः जो सरपंच होता है वो ये निर्णय देता है, पहले तो सोचते हैं कि हमको रहना तो इसी के साथ है, ये तो आज आए और चले गए, हमको तो रहना तो उल्लू के साथ है। तो उल्लू के पक्ष में निर्णय दिया जाता है कि हंसिनी जो है वो उल्लू की पत्नी है और हंस को तुरंत इस गांव को छोड़कर जाना। तो हंस तो चिल्लाने लगता है, दुखी होता है, रोने लगता है कि इस आफत में फंस गया, और वो जाने लगता है दुखी होकर। वो पीछे से फिर से वो उल्लू पुकारते, अरे हंस भाई जरा रुको। वो कहता है, अब क्या रहा, अब जान भी लोगे क्या। वो कहता है, नहीं, ये पत्नी तुम्हारी है, ले जाओ। तुमने कल रात में क्या कहा था, तुमने कहा था तुम्हारी कि तुम दोनों की जो बातचीत चल रही थी कि इस उल्लू के वजह से यहां सब वीरानगी है। वो कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी वजह से वो वीरानगी नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां के लोग उल्लू के पक्ष में फैसला देते हैं, इसलिए इस जंगल में इस स्थान पर बहुत कम लोग हैं और यहां कोई आके रहता नहीं है, इसलिए ऐसा है यहां पर कि ये उल्लू की बातें सुनते हैं, उल्लू के पक्ष में निर्णय देते हैं। तो जो जिसके संग में रहता है उसका असर होने लगता है। आज की मुरली में वरदान आया है सत्संग का, कौन किसके संग में रहता है उस पर उसका जीवन है, उसका चरित्र निर्भर है। हम किसके संग में हैं और संग के साथ तल है। पहला तल है संग का विचार, किस विचारों में हम रहते हैं दिन भर, किन विचारों का संग करते हैं, व्यर्थ नकारात्मक विकार, दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि, चिंता, किन विचारों का संग करते हैं। दूसरा तल है, ये मन का तल है। दूसरा तल है बुद्धि। बुद्धि से किस तरह के निर्णय किए जाते हैं, बुद्धि का तल संग का। तीसरा तल है संस्कारों का तल, किस तरह के संस्कारों का हम संग कर रहे हैं। आज की साकार मुरली में है, तुम्हें दैवी संस्कार आत्मा में धारण करने हैं। क्या करना है? दैवी संस्कारों को आत्मा में धारण करना। यह ज्ञान है समझने का और समझाने का। यह ज्ञान बड़ा डीप है, यह ज्ञान डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है। बुद्धि और बुद्धि के क्या फंक्शंस है, ये आप सबके लिए होमवर्क। बुद्धि क्या क्या करती है? सात काम करती है बुद्धि। बुद्धि के सात काम है, वो ढूंढ के लाना है, कल पूछेंगे क्या क्या बुद्धि करती है। वो दो छोड़ के जो क्लासेस कोर्स में बताते हो, कौन सा, निर्णय करना और परखना और निर्णय करना, ये छोड़कर ये उसमें मिला दो तो पांच और बताना, ठीक है। तो संस्कारों के तल पर हमारा कौन सा संग है। फिर है भावनाओं का तल, किन भावनाओं में हम सारे दिन भर रहते हैं। शुभ है या बीच बीच में अशुभ आती है, शुभ है क्या बीच बीच में कुभावनाएं धक्के देती है, थोड़ा थोड़ा क्या करती है, भावनाएं कैसी है। तो भावनाओं का एक तल है, क्या किस किन भावनाओं के साथ हम सारे दिन भर जीते। एक व्यक्ति है जो अहंकार की भावनाओं के साथ रहता है, उसका मन वैसा ही स्थिर अस्थिर रहेगा, कोई भी नई चीज किसी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति हीन भावनाओं में जीता है, कुछ भी उमंग उत्साह नहीं, हमेशा अपने आप को कोसते रहता है, मैं कुछ काम का नहीं, मैं कुछ काम की नहीं, मेरे से कुछ होगा नहीं, सब लोग इतना आगे बढ़ रहे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, हीनता के भाव है। कितने बुद्धिमान लोग हैं यहां सारे, और मैं ही हूं निर्बुद्धि, और कोई कोई अहंकार युक्त श्रेष्ठता ग्रंथि वाले सब पापी है यहां पर, मैं ही एक पुण्यात्मा हूं। पता नहीं इनका कैसे भर्ती हो गए यहां ब्रह्मा कुमारीज में। अपने अहंकार में जीते, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स श्रेष्ठता ग्रंथि, दूसरी तरफ हीनता ग्रंथि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों प्रकार की, और कभी कभी मिक्स्ड, दोनों चलता है साथ साथ, ये भी तो वो भी। तो भावनाओं का तल है, हम किन भावनाओं के साथ रहते। फिर है स्मृतियों का तल, कौन सी मेमोरीज के साथ हम जीते हैं। कोई व्यक्ति बैठा है अकेला एक घंटा, क्या सोच रहा होता है, पुरानी यादों में खो जाता है, वो बचपन के दिन, इधर उधर की बातें याद करता है, किसने किस कितना मुझे दुख दिया, किस किस से बदला लेना है, लिस्ट निकालता है, इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, अब मैं उनको क्या कहूं, सब अपने दुख। एक मुरली में बाबा ने कहा था, हर आत्मा अपने दुख दर्द में डूबी रहती है। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, हर आत्मा अपने ही दुख दर्द में डूबी हुई रहती है। तो वो तल है स्मृतियों का तल। फिर है कल्पना का तल, नई नई कल्पनाएं रचते रहता है, डे ड्रीमिंग, उसको हिंदी में कहते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न में खोया रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, इसी ख्यालातों में रहता है, जिसका जो अनरियलिस्टिक है, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और यह भी एक आदत सी बन जाती है डे ड्रीमिंग की, शेख चिल्ली की तरह स्वप्न में खोया रहता है, ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वो होगा। स्वप्न देखना है पर खुली आंखों से देखना है, बंद आंखों से नहीं। सातवां तल सबसे सूक्ष्म है, स्वप्न का तल। ये हमारे वश में है या नहीं है? कौन सा स्वप्न देखना हम सोच सकते हैं, आज मैं ये स्वप्न देखूंगा? ये सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि ये जो तल है इन छह का परिणाम है। जो ये छह व्यक्ति करते रहेगा, जो भी आएगा इसमें, वो रात में इधर दिखेगा स्वप्न में। तो ये भी एक संघ का तल है। तो आज की वरदान में बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम सत्संगी हो, एक परमात्मा के संग में रहते हो, ईश्वरीय संग में रहते हो, तो तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ सकता। हां, पर यदि तुम कमजोर हो गए अंदर से, तो फिर वो वेस्टफुल कंपनी का प्रभाव तुम पर बढ़ जाएगा। परंतु यदि तुम शक्तिशाली रहे और एक बाप के संग में रहे, तो कुछ भी नहीं होगा। पर हां, अगर उस संग में रहो तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक प्रश्न है कि हम इतना सत्संग करते हैं फिर भी असर क्यों नहीं होता हम पर, क्या कारण है? सुन हो गए और वेस्ट में चले जाते। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि आप इतना रोज सत्संग कराते हो और पर लोगों पे तो कुछ असर ही पड़ते दिखता नहीं है, क्या कारण है? वो कहता है, मैं तुम्हें कारण बताता हूं, एक काम करो, थोड़ी सी शराब लेके आओ। वो कहता है, क्या शराब? अवाक रह जाता है, गुरु ऐसी कैसी बातें कर रहा है। वो कहता है, लेके तो आओ। तो लेके आता है शराब की बोतल। वो कहता है, अभी मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, तुम इस शराब की बोतल को पूरा करो, तुमको ये पीना है, परंतु जब भी पियोगे गले तक पीना और आने के बाद फेंक देना, पर बोतल को पूरा करो। तो कहता है, ठीक है। तो वो पीना चालू करता है, एक घूंट पीता है, गले तक आती है, फेंक देता है, थूक देता है, फिर पीता है, फिर कुल्ली कर देता है, फिर पीता है, बोतल खत्म हो जाती है। गुरु कहता है, अच्छा कैसा रहा, नशा चढ़ गया? कहता है, नशा कहां से चढ़ेगा, क्योंकि वो तो गले से नीचे उतरी ही नहीं। वो कहता है, बस यही कारण है, लोग सत्संग तो करते हैं परंतु बात गले के ऊपर ही रहती है, गले से नीचे उतरती ही नहीं। तो कहां से परिवर्तन आएगा, कहां से असर होगा उनके जीवन में? बहुत सारे कारण है, ये तो एक कारण बताया केवल। हाँ, टाइम। तो सत्संग किसका संग करना है? परमात्मा का संग, ये सबसे बड़ा संग है। उसी के संग में रहना, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य है। तो जिसके संग में जो जितना समय रहेगा, उसके संग का असर पड़ते जाएगा, उसमें जो जो गुण है वो इधर आते जाएंगे, जो रंग उसका है वो रंग इधर लगते जाएगा, उसमें जो जो चीजें हैं वो सब इधर आएगी। जैसे आज की मुरली में आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, जैसे बाबा कैसे सबको आत्मा देखता है, वैसे ही अभ्यास करना है, वही प्रैक्टिस करनी है कि सब आत्माएं हैं। ये बड़ा गहरा अभ्यास है, तो ये अभ्यास यहां करना है। तो सत्संग अर्थात जो बातें सत्संग में सुनाई जा रही है, उसको अंदर ही अंदर धारण कर लेना, समा लेना अंदर, इतनी गहराई से समाना कि जीवन परिवर्तन हो जाए, ये कार्य करना है, तभी उस सत्संग की सार्थकता है। नहीं तो गए, बैठे और आ गए। जैसे वो एक दिखाया है सेठ जी, रोज सत्संग को जाते आते, रोज सत्संग को जाते आते। घर में एक तोता है, वो कहता है, आप सत्संग में जा रहे हो, मेरा एक प्रश्न गुरुजी से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। वो कहता है, ठीक है। वो जाता है सेठ जी और गुरु से पूछता है, मेरे तोते ने पूछा है कि उसकी मुक्ति कब होगी। गुरु चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता और बेहोश हो जाता है। उसको आश्चर्य लगता है और वो आता है वापस, और तोता पूछता है, क्या हुआ? वो कहता है, मैंने पूछा पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो बेहोश हो गए। तो कहता है, तोता कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और दूसरा दिन गुरु जी जाने लगते, ये सेठ जी जाने लगते सत्संग सुनने, तो देखते तो तोता बेहोश पड़ा है, सोचते तोता मर गया, दरवाजा खोलते और तोता उड़कर बाहर चला जाता है। सत्संग में पहुंचते वापस, गुरु जी पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सेठ जी कहता है कल आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कहते क्या प्रश्न था, प्रश्न था कि तोते ने पूछा है मुक्ति कब होगी, तो आज क्या हुआ। वो कहता है कि वो तो उड़ गया। वो कहता है तुम रोज सत्संग में आते हो, रोज इतनी मेरी बातें सुनते हो, और वो तो आता भी नहीं, केवल इशारे से समझ गया। पर इशारे से समझ गया वो कि क्या मुक्ति कैसे, तुम फिर भी इस मोहक माया के जंजाल में फंसे हुए हो, जो कि मैं रोज कुछ कह रहा बता रहा हूं, फिर भी फंसे हुए हो। उसने केवल इशारों से समझ लिया कि मर जाओ, अर्थात मर्जी वा जन्म जीते जी मर जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। तो सत्संग सात चीजों का करना है। सबसे बड़ा और सबसे पहला सत्संग कौन सा है, परमात्मा का। उसके साथ रहना, उसके संग रहना, उससे बातें करना, उसको अपने दिल की बातें बताना, और क्या करना उसके साथ, उसको देखना, उसके साथ चलना, घूमना फिरना, कल की मुरली में साना याद, अर्थात उठते फिरते चलते फिरते याद, लास्ट लाइन मुरली की, तो उसके साथ रहना। आज की मुरली में बड़ा पावरफुल वाक्य है एक, इस सत्संग में प्यूरिटी है, पवित्रता, और पवित्रता की बातें और किसी सत्संग में नहीं होती है उधर, इसलिए यहां पर विघ्न भी ज्यादा पड़ते हैं, इसलिए असुरों के विघ्न यहां पड़ते हैं। यह सर्वोच्च सत्संग है यह, क्योंकि यहां पवित्रता की बातें है, ऐसी बातें और किसी संग सत्संग में नहीं है संसार के। तो सबसे पहला संग जो करना है वो कौन सा है, परमात्मा, परमात्मा के संग रहने का, उसके साथ चलने का। अंग्रेजी में एक बुक है दे लिव्ड विद गॉड, किसी सन्यासियों के संग की किताब है, कि वो ऐसे शिष्य थे जो भगवान के साथ साथ चलते थे, दे लिव्ड विद गॉड, वो भगवान के साथ चलने वाले, भगवान को अपना सब कुछ समझने वाले। आज की मुरली में भी है, वो सब कुछ है, सखा बंधु साजन सब कुछ वही है। तो उसी के साथ रहना, उसी के संग में रहना, उसी से बात करना, उसी से दिल की बातों को शेयर करना, उसी का सुनना, और उसी के प्रति समर्पण, उसी से सर्व संबंध, उसी एक को देखते रहना, उसी को सुनाते रहना, सब कुछ एक। तो एक ये है सबसे बड़ा सत्संग, इससे बड़ा सत्संग इस संसार में और कोई भी नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य है, और जो उसके साथ रहता है वो कभी अंधकार में नहीं जा सकता। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्य से कहता है इस संसार का मैं प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द वे द ट्रुथ एंड आई एम द लाइट द वे एंड द ट्रुथ, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे पास आ जाओ। तो वो परम प्रकाश है, वो परम मित्र है, परम सलाहकार है, परम गाइड है, परम शिक्षक, मित्र, सब कुछ है। सबसे बड़ा काउंसलर वो है, उसको गाइड के रूप में प्रयोग करना। जैसे हमें कोई समस्या आती है तो गाइड को पूछते हैं क्या करें, कोच को पूछा जाता है क्या किया जाए, वैसे उसके सामने जाके पूछना कि ये परिस्थिति है क्या करूं, इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, ऐसा योग कर रहा हूं और क्या करूं, आज की मुरली में पोता मेल दो बाप को, चार्ट बाप को बताओ, लिखो कितना समय बाप की याद में रहे, आत्माभिमानी कितना रहे, अभी है आत्माभिमानी, सतयुग में होंगे, यहां है आत्मा और परमात्मा अभिमानी दोनों, वहां होंगे केवल आत्माभिमानी। आज की मुरली की शुरुआत ही वहां से। तो ये सबसे बड़ा संग है, ये संग से दूर हटते ही विकार आना चालू हो जाते हैं। भगवान को छोड़ा, बाप का बनंती सुनंती पवित्र बनंती, आज की मुरली है ना, और फिर बाप को फारकती देवंती, माया बड़ी प्रबल है। पुनः बाद में आवंती अच्छा मल्टीपल बनंती है बाद में आवंती बाकी सबको ज्ञान में लेकर तो सबसे बड़ा सत्संग परमात्मा संघ है। चेक करते रहना है मैं किसके संग में रहता है। और सात तल है उसके, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, संस्कारों के तल पर, भावनाओं के तल पर, कल्पना के तल पर, स्मृतियों के तल पर, और सातवां स्वप्न के तल पर। कितनी बार एक महीने में, पिछली बार पिछले एक मास में कितनी बार बाबा स्वप्न में आए थे आशीष भाई? विठल भाई आता है क्या कभी? हम तो उसके स्वप्न में रोज आते होंगे, पर वो हमारे स्वप्न में कितना आया? हमारे स्वप्न में वही आता है जो दिन भर जिसका चिंतन किया जाता है। स्वप्न के भी अलग सात प्रकार है, वो दूसरी बात, पांच प्रकार है वो कभी और। तो स्वप्न के भी अपने अपने प्रकार। तो उसमें एक स्वप्न तो वो होता है कि जो दिन भर सोचते रहो वो रात में दिखता है साकार। कुछ स्वप्न पूर्व जन्म के, कुछ स्वप्न दमन वाले, कुछ स्वप्न भविष्य के जो होने वाला है वो भी दिख जाता है। सुपर कॉन्शियस से आने वाले स्वप्न होते हैं कुछ, कुछ स्वप्न बचपन के, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार है उसमें। तो ये सात तलों पर ये सत्संग हुआ। कौन सा? परमात्मा। दूसरा संघ है परमात्मा ज्ञान का संघ। परमात्मा ज्ञान हमारे साथ कितना देर रहता है? ये भी सातों तलों पर, विचारों में परमात्मा ज्ञान, बुद्धि में परमात्मा ज्ञान, संस्कारों में उसका ज्ञान, कल्पना में, कल्पना में मतलब कल्पना करना है। कल की मुरली में था, तुम यूनिवर्सिटी में बैठे हो, सोचो ये ओम शांति भवन विलुप्त तो हो गया और मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूं, और यहां कोई कोई बुद्धू भी है। कल था, इमेजिन करना। तो ज्ञान, ज्ञान के संग में रहना अर्थात ज्ञान का चिंतन करते रहना, अर्थात ज्ञान का मनन करते रहना, अर्थात एक दूसरे से पूछते रहना। नंबर वन आत्मा कौन है विठल भाई? कल का स्लोगन जो क्या कर देती है, व्यर्थ को समर्थ बना देती है। चिंतन करते रहना है, मनन करते रहना है, पॉइंट्स नोट करते रहना है, पॉइंट्स को याद करते रहना है। यह है उसके ज्ञान का संग। यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान संसार में कोई है ही नहीं। सबसे महान ज्ञान, सर्वोच्च, द हाइएस्ट, पवित्र बनाने वाला, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन है ये, चरित्र निर्माण करने वाला ये ज्ञान है। संसार में चारित्रिक पतन हुआ है, उस पतन की गर्द से उठाने वाला यह सर्वोच्च ज्ञान है। तो किस ज्ञान, इस ज्ञान के किस में रहना है? इस ज्ञान से टॉपिक्स निकालने हैं रोज मुरली से, रोज मुरली से टॉपिक्स निकालने, रोज मुरली के टॉपिक्स पर सोचना, रोज मुरली की टॉपिक्स का डिस्कशन करना, आपस में कुछ तो लिखना, उसको क्रिएटिव राइटिंग करना। कुछ कर रहे हैं सभी कि नहीं? रोज करना है, ये डेली का काम है। जो मुरली आ रही है तुरंत लिखना, सतयुग में ये, वहां वो पढ़ाई होगी नहीं, यहां ये पढ़ाई है आज की मुरली में है, वहां वो पढ़ाई नहीं होगी, यहां है ये पढ़ाई। लिखना ये ज्ञान डीप क्यों है, ये ज्ञान डिफिकल्ट क्यों है, दो पॉइंट आई है आज की मुरली में, डीप है और बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है ये पढ़ाई क्यों, वो पॉइंट लिखना, और एक जगह ये भी बोला ये तो बहुत सहज है, दोनों चीजें रहती है उसमें, ये सहज क्यों है और डिफिकल्ट क्यों है, ये टॉपिक है। चिंतन करो सारे दिन भर। अगर चिंतन नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे बुद्धि को, तो बुद्धि कहां जाएगी? पुरानी यादें, दुख दर्द, पश्चाताप, भविष्य की चिंता है, वर्तमान जो साथी है उनका चिंतन, ये मेरे साथ ऐसा करता है, इसने मुझे ओम शांति किया ही नहीं, देखा पर उधर देख लिया, पता नहीं ऐसा क्यों करने लगा, इसका तो व्यवहार ही बदल गया है, जब पहले तो ठीक ठाक था, आजकल पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों बात करता है, पता नहीं कौन से संग दोष में आ गया है, पहले तो ठीक ठाक था, अभी तो मुझे देखते ही उधर से चला जाता है। जरूर मेरे बारे में किसी ने इसको कुछ तो बताया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी तो इतना मैसेज करता हूं कोई रिप्लाई नहीं, क्या हो गया, और पूछ भी नहीं सकते, बताओ तुम ऐसा क्यों करते, पूछेंगे तो और भी डर है, और हम क्यों पूछे, जाना है तो जाओ, पर चाहिए भी दोनों बातें वैसे ही करते हैं ना दो लोग, एक दूसरे को नोचते भी है और प्यार भी करते हैं, लव हेट रिलेशनशिप कहते हैं इसको। चाहिए भी और मिल जाए तो उसको खरोचते हैं पूरा, और नहीं मिला तो चाहिए। बड़ा जटिल है मनुष्य मन, क्या चाहिए वही पता नहीं उसको। तो परमात्मा ज्ञान का संकरण है, ये ज्ञान बुद्धि में नहीं रहा, ये बुलबुल टिकलू टिकलू नहीं करती रही तो वो उल्लू अपनी कर्कश आवाज करते रहेगा। तीसरा है आत्माओं का संग, आत्माओं का सत्संग। आत्माओं का सत्संग में जो हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, उनका संग, जैसे दादियों का संग यदि सहज मिल जाए, या फिर साथियों, साथी ऐसी आत्माएं जो ज्ञान में जिनको रुचि है, या कोई हमारे छोटे भी जो ज्ञान में इंटरेस्टेड है जिसको हम सिखाए, तो यह भी तो एक सत्संग की कैटेगरी है। सूचनात्मक सत्संग होता है, उपदेशात्मक सत्संग होता है, सत्संग के भी अलग अलग प्रकार है। चर्चात्मक सत्संग जिसमें चर्चा चल रही है खाली, वो भी सत्संग है। तो इन तीनों में से किसी के साथ भी डिस्कशन करना, अनुभव शेयर करना, पूछना अनुभव, जो नए नए लोग आते हैं सेवाधारी, उनसे भी बैठ के कितना कुछ सीखा जा सकता है, उनके जीवन में भी कितने अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो अभी अभी ज्ञान में आए, 6 महीना हो गया, 6 महीने में उनको ऐसे ऐसे अनुभव हो गए, हम इधर 6 साल से हैं, हमको एक भी नहीं हुआ, और उसको बता भी नहीं सकते। हाँ हाँ ठीक है, बताओ बताओ क्या। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये होता है शुरुआत में, ये सब होता है ऐसे बोलना, और हमको तो कुछ भी नहीं हुआ था, शुरुआत में भी नहीं हुआ ना, अब हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता हमको। तो वो कहता है मैं बैठता हूं तो बताओ शरीर भूल जाता है, हमको आज तक नहीं हुआ, भूल बैठते तो और ही ज्यादा शरीर याद आता है, इधर खुजली उधर खुजली, इधर डोलता हूं उधर डोलता हूं, पता नहीं खुजली तो वैसे तो रहती नहीं है, योग में बैठने के बाद ही चालू होता है, वैसे तो कुछ नहीं होता है, बातें करता हूं तो कभी कोई मच्छर नहीं, योग में आता तो मच्छर ही सब इधर उधर आने लगते हैं। योग हमारा भंग करने वाले ऐसे दुष्ट मच्छर, आत्माओं का संग करना है। वो आत्माएं जो महान है, जो श्रेष्ठ है, जो ऊंची है, जो ज्ञान की बातों में रुचि रखती है, जिनको योग में बहुत इंटरेस्ट है, योग बहुत अच्छा लगता है उनको, योग बल जिनके अंदर है, ऐसी आत्माओं, ये भी सत्संग है। चौथा है सुनना, आवाज का सत्संग। यदि ऐसी आत्मा हमें नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, ऑडियो क्लासेस, वीडियोस, ऑडियो विजुअल सत्संग, उनकी आवाज सुनना, उनसे कुछ प्रेरणा लेना, क्योंकि हर आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और जो आत्माएं आज है ही नहीं, जो यज्ञ की शुरुआत की दादियां, वो आज है ही नहीं, अब उनका संग कैसे करेंगे हम, तो उनकी वाणी है, उनके रिकॉर्डेड स्पीचेस है, और वो भी नहीं रहे, और एक चीज होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाश में भी रिकॉर्ड्स है, जब बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है तो उन रिकॉर्ड्स को भी सुन सकती है। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा था मधुबन की इस भूमि में, अभी भी रिकॉर्डेड है वो आकाश में, आकाशिक रिकॉर्ड्स इंग्लिश शब्द है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, वो अगर कोई इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाए तो वो आवाज भी सुन सकते हैं। चाणक्य ने क्या कहा था, वो आवाज भी अभी भी है आकाश में, आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो वो आवाजें भी, पर वो तो दूर की बात है, अभी हमारे पास ये है, इसे ये सुन लो अभी, ये ठीक है। तो ऑडियो, तो लक्ष्य रखना है कि कुछ ना कुछ सुनते जाना है, कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई दादी का अनुभव, अनुभव सुनना सबसे अच्छी चीज है। यज्ञ के इतिहास की बहुत सारी क्लासेस है, सबसे बेस्ट है उन क्लासेस को सुनते रहना, पुरानी क्लासेस, पुरानी बातें, क्या क्या हुआ था यज्ञ में, कैसे कैसे ये सारी दादियां निकली थी, एक एक का जीवन बड़ा महान, सूक्ष्म, गहरा समझना है उसको, इसी से प्रेरणा मिलेगी। तो यह है ऑडियो विजुअल, ये मॉडर्न सत्संग है, थोड़ा एकदम आधुनिक सत्संग, पर सबसे अच्छा है ये भी। उसके बाद है किताबें, किताबों का संग करना, व्यक्ति अकेला है, कहता है मुझे बोर हो रहा है, बोर कैसे होता है मुझे ये नहीं समझ में आता है लोगों को, ये बोर्डम क्या होता है, जबकि इतनी सारी किताबें हमारे पास है, यज्ञ की किताबें है, इतना सारा साहित्य है, बोर हो कैसे सकता है? सारा पढ़ के हो गया? जगदीश भाई की लिखी हुई सारी किताबें पढ़ के हो गई क्या? जो हम कह रहे बोर हो रहा है, चलो कहीं घूमने जाते हैं, क्या घूमने, पहले ये पढ़ाना हो गया क्या? बुक्स, माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, व्हेनेवर दिस कैजुअल आईज आर कास्ट, माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद हुम आई कॉन्वर्स डे बाय डे। लेखक लिखता है कि एकांत में ये मेरे एकमात्र मित्र है, कौन, किताबें। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, मैं उनके साथ दिन रात बात करते रहता हूं। अंग्रेजी कवि रॉबर्ट सॉथी की पोयम है बुक्स के विषय में, ऐसा ये इतना बड़ा भोजन, द वास्ट रिपास्ट इन फ्रंट ऑफ मी, कब खाऊं और क्या खाऊं। लाइब्रेरी में जाता हूं तो ऐसी भूख लग जाती है, लगता है क्यों खाऊं और क्या नहीं, ऐसा लेखक लिखता है। तो बुक्स सबसे अच्छा सत्संग है, बुक्स के कंपनी में रहना, और सबसे ज्यादा बुक्स श्रेष्ठ है अव्यक्त वाणियों की किताबें, साकार मुरलिया, मैगजीन्स, ज्ञानामृत, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, और अभी तो बहुत सारी और भी निकल गई है वो सारी, और लिटरेचर यज्ञ का, जगदीश भाई की लिखी हुई सारी किताबें, और एडिशनल बहुत सारी किताबें आ गई है, स्पार्क की किताबें, कितना सारा लिटरेचर पढ़ने को है। और हम कहते हैं हम बैठे हैं, क्यों बैठे हो, कुछ करने को है ही नहीं, क्यों करने को, क्यों नहीं, किताबें अलग अलग जगह रख दो, बेड है उसके बाजू में एक किताब रख दो, ऑफिस है उसमें एक किताब रख दो, अलग अलग जगह है वहां अलग अलग किताबें रखो, ताकि वहां बैठो तो वो पढ़ सको, और अगर कुछ भी रखना नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो है ही, इससे पढ़ो, हार्ड कॉपी पढ़नी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी इसी से पढ़ो सीधा, ये भी एक सत्संग है। फिर उसके बाद में है स्थान, स्थान भी सत्संग होता है, एक होता है मन से जाना, एक होता है वास्तव में जाना, मधुबन के चार धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, मंदिर, बहुत सारे सतयुग, चक्कर लगा के आना है वहां पर, अपने मंदिरों में देख के आना, भक्त ठीक तो है ना प्रभाकर भाई, सब तो सबको कुछ सब मिल रहा है कि कुछ चाहिए किसी को, तो ये भी एक सत्संग है। और लास्ट है सकाश ग्रुप, सकाश ग्रुप अर्थात सकाश ग्रुप, अपने भक्तों के साथ संग करना, अपने वो जो संसार की आत्माएं हैं जिनको सकाश देनी है उनका संग करना, हमारे लिए वो सत्संग है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, बाबा से जुड़ रहे हैं और उनको दे रहे हैं, आत्माओं को दे रहे, ये काम सबसे ज्यादा करते रहना है, सकाश ग्रुप, उनसे जुड़ना है आत्माओं के साथ, क्योंकि आत्माएं दुखी है, तड़प रही है, भटक रही है, भगवान को जानती नहीं है, तुम जानते हो वो नहीं जानते आज की मुरली में, तुम समझते हो वो नहीं समझते आज की मुरली में, उन्हें कुछ पता ही नहीं तो भटक रही है, उनकी प्यास मिटानी है, भक्तों को साक्षात्कार कराना है। हिमालय पर बैठे तपस्वी है, 15 साल से तपस्या कर रहा है, तो उसका तो कुछ करना पड़ेगा ना, उसको कुछ साक्षात्कार भिक्षात्कार तो कराना पड़ेगा, हमको ही कराना है वो, तो वो भी एक काम है। तो ऐसे ये 7 प्रकार के सत्संग है। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है, निरंतर सत्संग में रहना है 7ों तलों पर, ताकि कोई भी 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर बुड ना जाए, फ्री ना रहे, फ्री हो गई तो गए, तो कोई ना कोई विकार आएगा, कोई ना कोई पुरानी याद आएगी, भविष्य की कोई ना कोई चिंता घेर लेगी और हम गिर जाएंगे। तो निरंतर स्वयं को ऊंचा उठा के रखना है, जितना सत्संग में रहेंगे उतनी बुद्धि कैसी बनेगी, शुद्ध बनती जाएगी। तो आज का ये वरदान था। तो ये सत्संग के 7 रंग थे, 7 रंग, 7 तल और 7 रंग, तो इसी रंग में स्वयं को रंगा के रखना है। ओम शांति।